मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 16 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं यूरोपीय संघ और भारत इसके बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले आइए दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज़ में आपने सुना कि जो हमारे यहाँ जो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी कल उसके 5 साल पूरे हो गए और अखबारों में भी थोड़े बहुत आर्टिकल्स आपको इसके बारे में पढ़ने को मिल रहे होंगे। स्किल इंडिया भारत के लिए बहुत जरूरी यह एक मिशन था, एक अभियान था। और आप देखिए कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती है भारत में या बाहर के लोग सोचते हैं कि हम भारत में उद्योग स्थापित करें तो ये बात तो उनके दिमाग में बहुत क्लियर है कि वहां श्रम की कमी नहीं है, लेबर वहां है और सबसे बड़ी बात है जो भारत की ताकत भी है कि सस्ते श्रम है। लेकिन जो दिक्कत महसूस करते हैं यहां आकर कि वो जो श्रम है वो स्किल्ड नहीं है और ये हमारे श्रम की सबसे बड़ी समस्या है। दो समस्याएं सबसे बड़ी हैं, पहला तो ये कि हमारे यहाँ का जो श्रम है वो स्किल्ड नहीं है, दूसरा ये कि वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं है। और खासकर कोरोना के समय में जो प्रवासी मजदूरों की जो बात होने लगी थी तो उसमें आपने देखा कि ये दो समस्याएं सबसे पहले उभर कर आई है। तो वो अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड बनाने के तहत 5 साल पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने यहां 3 शब्द दिए, स्पेशली मैं 3 शब्दों को यहां आपके सामने रखना चाहूंगा। अब आप देखिए कि क्या है, टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, लगातार बदल रही है। आप अपने सामने ही देख रहे हैं, आपके हाथ का जो मोबाइल है आप सोच करके देखिए अगर 10 साल पुराना होगा तो आज वो कितना आउट ऑफ डेटेड हो चुका है। तो स्किल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो इससे कैसे निपटे, तो इसके बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने 3 शब्द दिए, पहला उन्होंने कहा कि स्किल यानी कि आप कुछ सीखिए। उदाहरण भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है तो आप उस लकड़ी के टुकड़े को किसी चीज में बदलने का हुनर सीख लीजिए। कुर्सी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, पलंग बनाएंगे, अलमारी बनाएंगे, तो लकड़ी के टुकड़े को आपने एक वस्तु में कन्वर्ट कर दिया, उपयोगी वस्तु में, तो उसका वैल्यू एडिशन हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई। फिर उन्होंने कहा कि री स्किल का मतलब है कि ठीक है अब आपने पलंग बनाना सीख लिया या चेयर बनाना सीख लिया तो अब आप उसमें नई नई डिजाइन बनाना शुरू कीजिए, अपने स्किल को मांझिए, डिजाइन तैयार कीजिए, तो उससे आप समय के साथ चलने लगेंगे। इसके बाद फिर उन्होंने कहा अप स्किल का मतलब है कि अब आप उसका विस्तार कीजिए, यह नहीं कि आप लोकल लेवल पर बना रहे हैं तो बस वहीं तक काम हो रहा है, नहीं, उसमें और नई नई चीजें जोड़ते चले जाइए और उसके मार्केट को फैलाइए। तो इस तरह से स्किल इंडिया के तहत उन्होंने 3 बहुत अच्छे शब्द दिए हैं। मैं आपको याद इसलिए दिला रहा हूं, हो सकता है कि आपने सुना हो और आप उसे उतना याद न रख पाए या पर उतना ध्यान न दें, तो आप अपनी राइटिंग में, आंसर राइटिंग में इन 3 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे शब्द हैं, स्किल, री स्किल और अप स्किल। दोस्तों न्यूज पेपर में आपने पढ़ा कि जो हमारे जो जियो है, रिलायंस इंडस्ट्री का जो एक प्लेटफॉर्म है जियो प्लेटफॉर्म, उसने कहा है कि लगभग उसने 5G टेक्निक डेवलप कर ली है और वह विश्व स्तरीय सेवाएं देने में सक्षम है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। देखिए हम वैसे तो हमारे यहाँ बहुत बड़े अच्छे अच्छे IIT के इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे इंजीनियर्स भी हैं और हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं दुनिया के दूसरे देशों में खासकर अमेरिका जैसे विकसित देशों में जाकर के काम कर रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं। लेकिन हमारी सीमा यह है कि हम बना कुछ नहीं पा रहे हैं, एक तरह से हम नौकरी करने वाले बनकर रह गए हैं। और चीन ने वहीं हमसे आगे बढ़ करके क्या किया है, बनाना शुरू किया है। आप देखिए कि उन्होंने कितने ऐप डेवलप कर लिए, 5G तकनीक उनकी जो कंपनी है हुआवे उन्होंने डेवलप किया है, भारत का सब उसके साथ बातचीत भी चल रही थी कि क्योंकि हमको भी 5G टेक्निक चाहिए। और जब हम हुआवे जैसे को 5G टेक्निक के बारे में बात करते हैं उनसे तो आपको मालूम है कि हुआवे पर जासूसी का आरोप भी लगाया है। और चीन जिस तरह का देश है तो वहां की सरकार का नियंत्रण कहीं ना कहीं इस कंपनी पर होगा, यानी कि ये जो कंपनी है सत्ताधारी जो लोग होंगे उनके इशारे पर काम करेगी, तो ऐसी स्थिति में हमारी डेटा की जो प्राइवेसी है वो भी नहीं रह जाती और इससे हमारा कितना धन चीन को जाएगा। तो अगर हम अपने यहां ही इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तो उससे राष्ट्रीय सुरक्षा इंश्योर हो सकेगी, रोजगार इंश्योर हो सकेगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी अब जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वह आत्मनिर्भरता भी इंश्योर हो सकेगा, सुनिश्चित हो हो सकेगा। तो मित्रों, यह एक बहुत बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि इस घटना का भी उल्लेख कई उत्तरों में आपके हो सकता है। इसके लिए कुछ एडिटोरियल कमेंट्स लिखे गए हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक अलग तरह का आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो दैनिक भास्कर में छपा है। ये चेतन भगत जी का आर्टिकल है। दरअसल अभी जो फिल्म एक्टर सुशांत जी की जो मृत्यु हुई है या उन्होंने आत्महत्या किया है, अब देखिए कि क्या चीजें सामने आती हैं, उसको लेकर के उन्होंने ये लेख लिखा है। और इस लेख की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि इन्होंने जो एंगल दिया है वो समाजशास्त्रीय एंगल दिया है, यानी कि इस घटना का यूं कह लीजिए कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है और खासकर इस बात को केंद्र में रख करके कि सुशांत सिंह की इस मृत्यु ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। आप देखिए कि चाहे वो सोशल मीडिया हो, अखबार हो, व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत हो, कितनी बातचीत हो रही है। तो उन्होंने यहीं से सवाल उठाया है कि इतनी बातचीत क्यों हो रही है, आखिर में ऐसा क्या हो गया कि इतनी बातचीत हो रही है एक एक्टर के डेथ होने पर। तो इसे उन्होंने समाज से जोड़ करके देखा है कि अभी जो हमारे वर्तमान का जो समाज है, इस समाज में ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां उभर रही हैं जिसकी ओर सुशांत सिंह की यह मृत्यु इशारा करती है। और केवल इशारा ही नहीं करती बल्कि इस इशारे ने हमारा जो खासकर युवा वर्ग है उसको अंदर से हिला कर रख दिया है, या यूं कह लीजिए कि चिंतित कर दिया है। तभी युवा वर्ग इस घटना की इतनी चर्चा कर रहा है। इसके बारे में उन्होंने 4-5 प्रश्न उठाए हैं, हालांकि आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो दिखाई दे जाएंगे, फिर भी उसको अंडरलाइन करने की दृष्टि से मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। तो पहला तो उन्होंने ये कहा, बताया है कि ऐसा लग रहा है कि क्या सच में कोई भी भारतीय जो बहुत ही सामान्य वर्ग का है, जिसके पास कोई बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है? क्या वो उसे महत्वाकांक्षी होना चाहिए? क्या जरूरी हो गया है कि हमें कोई सपोर्ट मिले ही या हमारा कोई गॉड फादर हो तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए कोई जगह नहीं है? क्या सच में अब भारत उस स्थिति में आ गया है कि जो शक्तिशाली लोग हैं, जो सामंतीय लोग हैं, वे ही शासन करेंगे, वे ही सफल होंगे, जो नीचे के लोग हैं वे उनको मिटा देंगे? तो देखिए, ये सारी बातें उन्होंने अपने ढंग से यहां पूछी हैं। मतलब हमें बिल्कुल ये नहीं मान करके चलना चाहिए कि उन्होंने जो बातें कही हैं कोई निष्कर्ष के तौर पर कही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं, क्योंकि देखिए, जब हम सुशांत सिंह को इस रूप में लेते हैं कि वहां की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से निराश हताश होकर के उन्होंने ऐसा कदम बढ़ाया, कुछ लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, तो ऐसे हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं जो अपने दमखम पर वहां स्थापित हैं और काफी आगे बढ़े भी हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इस लेख का यह है कि उन्होंने समाजशास्त्री तरीके से कम इस विषय को देखने और समझने की कोशिश की है, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इसी तरह की अप्रोच जरूरी होती है, वहां इमोशनल अप्रोच काम नहीं करती है। तो दोस्तों, आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा और इसमें से जो आपको अच्छे पॉइंट्स लगे उन पॉइंट्स को आपको नोट भी करना चाहिए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है यूरोपीय संघ और भारत। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस पर आपको बहुत ज्यादा विस्तार से बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक सजेशन जरूर दूंगा कि कल के दूरदर्शन समाचार में यह बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। अच्छे से प्रस्तुत किया गया इन द सेंस कि न्यूज के फॉर्म में भी बहुत अच्छे से था। फिर दो हमारे जो डिप्लोमेट्स थे उनको डिस्कशन के लिए बुलाया गया था, और उन्होंने भी यूरोपीय संघ के साथ हमारे जो संबंध अभी हैं, आगे किन किन इश्यूज पर बात चल रहे हैं और किस तरीके से ये संबंध आगे बढ़ सकते हैं, इन पर बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस डिस्कशन को एक बार जरूर सुन लें, और केवल सुन ही न लें बल्कि आपको चाहिए कि उसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट भी कर लें। लेकिन ध्यान रखेंगे कि उसमें जो पॉइंट्स होंगे वो अभी के ही होंगे, करेंट के होंगे, आगे बातें बदल भी जाती हैं, तो ये काम आपको अपने ढंग से करना होगा। इस टॉपिक को मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, देखिए, अगर वैसे तो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ से जब ब्रिटेन अलग हुआ तो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वो न्यूज थी, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज थी। उस समय भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के न तो प्री में कोई क्वेश्चन आया, न मेंस में कोई क्वेश्चन आया, तो आप कह सकते हैं कि फिर यूरोपीय संघ अभी प्रश्न आने की क्या संभावना है। मैं आपको दोस्तों ये भी क्लियर कर दूं, अभी आने की इसलिए संभावना है क्योंकि आप देखिए कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीन के विरोध में अभी पूरा वैश्विक माहौल बना हुआ है, और यूरोपीय संघ के अंतर्गत तो चीन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा धारणा बन गई, क्योंकि आपको मालूम है कि कोरोना से यूरोप महाद्वीप बहुत ज्यादा त्रस्त रहा है। तो चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, यानी कि उनका मुकाबला करने के लिए, भारत को यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उनकी मदद चाहिए, या यूं कह लीजिए कि इससे चीजें काफी कुछ बैलेंस हो जाएंगी। तो इसे आपको दो स्तरों पर देखना होगा, पहला चीन और पाकिस्तान को कैसे इसके माध्यम से संतुलित किया जा सकता है, दूसरा आर्थिक विकास कि अगर भारत के संबंध इनके साथ और आगे बढ़ते हैं, देखिए बेहतर तो हैं, मैं कह रहा और आगे बढ़ते हैं तो भारत को उससे क्या क्या लाभ हो सकता है। दोस्तों जो यूरोपीय संघ के देश हैं इनके पास दो चीजें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला इनके पास कैपिटल बहुत है, और जो यूरोपीय संघ के देश है भारत में जो विदेशी निवेश हो रहा है उनमें सबसे बड़े निवेशकों में ये देश है, तो इनके पास कैपिटल बहुत है और हमको कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा है कि इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, और आज कोई भी अर्थव्यवस्था बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के सर्वाइव इंटरनेशनल मार्केट में तो कम से कम नहीं कर सकती। तो अगर हमारे रिश्ते बहुत बेहतर होते चले गए तो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकेगा, उद्योग भी लग सकेंगे विदेशियों के द्वारा, तो उससे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी आ सकेगी। तो इस तरह से जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होंगी तो इसका सीधा सीधा प्रभाव डेफिनेटली रोजगार की स्थिति पर पड़ेगा, हमारी GDP बढ़ेगी। अभी भी जब दूरदर्शन पर आप उस न्यूज को देखेंगे तो उसमें यह आंकड़ा दिया गया है कि लगभग 67 लाख रोजगार अभी वे कंपनियां दे रही हैं जो यूरोपियन यूनियन की कंपनियां हैं जो भारत में है, और हमारा भी बहुत निवेश उनके देशों में है, हमारे यहाँ की भी बहुत सी कंपनियां वहां काम कर रही हैं, हमारे यहाँ के बहुत से लोग वहां नौकरी कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के जो संबंध हैं कम से कम एक साल के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही गए हैं, तो इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, प्रीति पाठक, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, अपूर्वा पांडे और प्रेमचंद यादव, आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, नमस्कार।